एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, स्वागत है सभी सुनने वालों का। आज हम एक ऐसी किताब की पड़ताल कर रही हैं जो पूछती है, इंसान होने का मतलब क्या है, हम दुख और अनिश्चितता भरी दुनिया में अर्थ कैसे ढूंढते हैं।
बिल्कुल, ये सवाल तो शायद हर किसी के मन में कभी ना कभी आता ही है।
जी,
और आज हम जिस किताब पे बात कर रहे हैं वो इन्हीं गहराइयों में उतरती है। जॉर्डन पीटरसन की मैप्स ऑफ मीनिंग, द आर्किटेक्चर ऑफ बिलीफ, काफी जटिल और प्रभावशाली किताब है ये।
हाँ, थोड़ी अकादमिक लग सकती है शुरू में, लेकिन इसके जो विचार हैं वो आज की दुनिया के लिए बहुत मायने रखते हैं। मुझे लगता है हम लगातार अलग अलग विश्वासों और क्या कहते हैं विचारधाराओं के टकराव देखते हैं।
सही कहा,
ऐसे में ये समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर ये विश्वास बनते कैसे हैं, ये हमें रास्ता कैसे दिखाते हैं और कभी कभी कैसे भटका भी सकते हैं।
और ये किताब सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन की बात नहीं करती है ना, बल्कि बड़े सामाजिक और ऐतिहासिक घटनाओं को भी एक मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखती है। क्यों एक ही विश्वास प्रणाली कभी महान कामों के लिए प्रेरित करती है तो कभी भयानक नतीजों तक ले जाती है, ये समझने की कोशिश है इसमें।
तो चलिए शुरू करते हैं इस विचार यात्रा को। शुरुआत करते हैं लेखक से। जॉर्डन पीटरसन है कौन और ऐसी किताब लिखने के पीछे उनकी क्या पृष्ठभूमि है?
डॉक्टर जॉर्डन बी पीटरसन, हाँ, वो कनाडा के एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, टोरंटो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर एमेरिटस रहे हैं और पहले हार्वर्ड में भी पढ़ा चुके हैं। उनकी विशेषज्ञता क्लिनिकल साइकोलॉजी में है, खासकर पर्सनैलिटी और असामान्य मनोविज्ञान में। लेकिन उनकी खासियत ये है कि वो सिर्फ मनोविज्ञान तक ही सीमित नहीं रहते।
सही कहा, वो मनोविज्ञान के साथ साथ मिथकों, धर्म, दर्शन, साहित्य, इतिहास, यहाँ तक कि न्यूरोसाइंस को भी एक साथ लाकर देखते हैं।
हाँ, उनका नजरिया काफी अनोखा है, जैसे कोई इंजीनियर किसी जटिल मशीन को, मतलब यहाँ इंसानी विश्वास प्रणाली को खोलकर समझने की कोशिश कर रहा हो कि भाई ये काम कैसे करती है।
अच्छा,
और मैप्स ऑफ मीनिंग ये किताब उनके लगभग 15 साल के गहरे शोध का नतीजा है। ये सब शुरू हुआ था 20वीं सदी की जो भयानक घटनाएं थी, जैसे शीत युद्ध और होलोकॉस्ट, उनके पीछे के मनोवैज्ञानिक कारणों को समझने की उनकी कोशिश से। वो जानना चाहते थे कि इंसान इतने बड़े पैमाने पर बुराई करने में सक्षम कैसे हो जाता है, ये सवाल उन्हें बहुत परेशान करता था।
तो चलिए अब सीधे किताब पर आते हैं, मैप्स ऑफ मीनिंग। इसका मूल विचार क्या है, ये कहना क्या चाहती है किताब?
आसान शब्दों में कहें तो पीटरसन का तर्क ये है कि इंसान सिर्फ जीने के लिए नहीं बना है, उसे जीने के लिए एक अर्थ या मकसद चाहिए होता है। हम दुनिया को सिर्फ जानकारी के ढेर की तरह नहीं देखते, बिल्कुल नहीं, बल्कि हम उसे कहानियों और अनुभवों के चश्मे से समझते हैं।
कहानियों और अनुभवों से?
हाँ, और ये कहानियां खासकर पुरानी कथाएं, मिथक और धार्मिक ग्रंथ, ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं।
तो फिर ये क्या है अगर सिर्फ कहानियां नहीं है तो?
पीटरसन इन्हें मानवविज्ञानिक नक्शे कहते हैं, मैप्स। ये नक्शे हमें जिंदगी की दो बुनियादी हकीकतों के बीच रास्ता दिखाते हैं। एक है व्यवस्था, ऑर्डर, यानी वो सब कुछ जो हम जानते हैं, जो पहचाना हुआ है, सुरक्षित है, नियम कायदे, हमारी संस्कृति, हमारा रोजमर्रा का जीवन, ये सब।
और दूसरी हकीकत?
वो है अव्यवस्था, कैओस, यानी अनजाना, अप्रत्याशित, कभी कभी डरावना भी। ये भविष्य हो सकता है, कोई अनहोनी घटना, कोई नया विचार जो हमारे पुराने विश्वासों को चुनौती दे। लेकिन इसी अव्यवस्था में संभावनाएं भी छिपी होती हैं, कुछ नया सीखने का मौका भी।
अच्छा,
पीटरसन कहते हैं कि सच्चा अर्थ न तो पूरी तरह व्यवस्था में है, न ही पूरी तरह अव्यवस्था में, बल्कि इन दोनों के बीच एक मुश्किल संतुलन साधने की लगातार कोशिश में है। ये एक डांस जैसा है।
यानी ये किताब पूछ रही है कि दुख और अनिश्चितता तो जीवन का हिस्सा है, फिर भी हम सार्थक जीवन कैसे जी सकते हैं? ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं, बल्कि मनोविज्ञान, मिथक और हमारे व्यवहार से जुड़ी बातें हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जो जिंदगी के बड़े सवालों में रुचि रखते हैं और गहरे विचारों पर सोचने को तैयार हैं।
बिल्कुल, तो अब जरा किताब के अंदर चलते हैं। पीटरसन शुरुआत करते हैं अर्थ की समस्या से। वो कहते हैं कि जब हमारी जिंदगी का मतलब या मकसद टूट जाता है, जब हमारे बनाए हुए नक्शे काम करना बंद कर देते हैं, तब हम मनोवैज्ञानिक रूप से बिखर जाते हैं। यहीं पर वो मिथकों की अहमियत बताते हैं कि मिथक हमें इन गहरे मनोवैज्ञानिक सच को समझने में मदद करते हैं।
इसके बाद अध्याय एक में वो अनुभव के नक्शे की बात करते हैं, मैप्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये नक्शे क्या हैं? क्या ये सिर्फ हमारे विचार हैं?
नहीं, ये सिर्फ विचार नहीं है, ये वो मानसिक और सांस्कृतिक ढांचे हैं जिनके जरिए हम दुनिया को समझते हैं और उसमें काम करते हैं। पीटरसन अब एक दिलचस्प बात कहते हैं, हमारा दिमाग दुनिया को ऐसे नहीं देखता जैसे कोई वैज्ञानिक लैब में चीजों को देखता है, मतलब वस्तुनिष्ठ रूप से नहीं।
अच्छा, तो कैसे देखता है?
हमारा दिमाग दुनिया को कर्म क्षेत्र की तरह देखता है, फोरम फॉर एक्शन। हर चीज या तो हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में मददगार है या रुकावट है या फिर गैर जरूरी है।
अच्छा, ये नजरिया तो बिल्कुल अलग है। तो इन नक्शों के बुनियादी हिस्से क्या हैं? अध्याय टू इसी पर है शायद।
हाँ, अध्याय टू में वो मूल तत्वों की बात करते हैं। पीटरसन कहते हैं कि हम अपने अनुभव को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटते हैं। एक है जाना हुआ क्षेत्र, एक्सप्लोर टेरिटरी। ये व्यवस्था, संस्कृति, स्थिरता से जुड़ा है और इसका मनोवैज्ञानिक प्रतीक या मूल रूप आर्किटेप जिसे कहते हैं वो है ग्रेट फादर या बुद्धिमान राजा।
ओके, और दूसरा?
दूसरा है अनजाना क्षेत्र, अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी। ये अव्यवस्था, प्रकृति, भविष्य, अनिश्चितता से जुड़ा है। इसका मूल रूप है ग्रेट मदर या कभी कभी वो डरावना ड्रैगन जो कहानियों में होता है।
और ये मूल रूप सिर्फ सकारात्मक नहीं होते, है ना? आपने कहा ड्रैगन, तो इनका एक नकारात्मक पहलू भी होता है।
बिल्कुल सही, बहुत अच्छा पॉइंट है। जैसे ग्रेट फादर व्यवस्था और सुरक्षा देता है, लेकिन अगर वो जरूरत से ज्यादा कठोर हो जाए तो वो अत्याचारी बन जाता है, जो किसी भी नए बदलाव को कुचल देता है।
और ग्रेट मदर?
इसी तरह ग्रेट मदर जीवन और सृजन का स्रोत है, लेकिन अपने डरावने रूप में वो विनाशकारी शक्ति है जो सब कुछ निगल सकती है या फिर इतनी ज्यादा सुरक्षा दे सकती है कि व्यक्ति का विकास ही रुक जाए, घुटन महसूस होने लगे। पीटरसन मानते हैं कि ये अनुभव करने के तरीके हमारे दिमाग की बनावट में, हमारे तंत्रिका जीव विज्ञान में गहरे बसे हैं और दुनिया भर की कहानियों और मिथकों में बार बार दिखते हैं।
तो इन दोनों व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच संतुलन कौन बनाता है? यहाँ पर नायक का जिक्र आता है ना, हीरो का।
एकदम, नायक द हीरो या दिंद्रपुत्र, ये पीटरसन के मॉडल का शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। नायक वो व्यक्ति है जो डर के बावजूद अपनी मर्जी से अनजाने का, यानी अव्यवस्था का या ड्रैगन का सामना करता है। ये उसका चुनावा रोल है,
अपनी मर्जी से।
हाँ, स्वेच्छा से वो अव्यवस्था के खतरनाक पहलू से लड़ता है और उसमें छिपे खजाने, यानी नया ज्ञान, कोई हुनर या गहरी समझ को हासिल करता है। ये उसका लक्ष्य होता है।
और फिर उस खजाने का क्या करता है हासिल करके?
वो उसे वापस अपने समाज या समुदाय में लाता है, व्यवस्था में लाता है। इससे जो पुरानी स्थिर पड़ चुकी व्यवस्था है उसमें नई जान आती है, वो बेहतर बनती है। नायक असल में चेतना, साहस, सच बोलने, जिसे पीटरसन यूनानी शब्द लोगोस से जोड़ते हैं, और लगातार बदलते माहौल में ढलने का प्रतीक है।
तो ये मनोवैज्ञानिक और सामाजिक तरक्की का रास्ता है। हर व्यक्ति का यही आदर्श रोल या भूमिका है।
हाँ, एक तरह से यही उनका आदर्श रोल है, यही उनका लक्ष्य होना चाहिए पीटरसन के अनुसार।
अध्याय तीन और चार भी इसी से जुड़े लगते हैं। अध्याय तीन में वो बताते हैं कि कैसे हम अपनी संस्कृति के नक्शे अपनाते हैं, मतलब समाजीकरण, इनकल्चुरेशन। ये जरूरी है, हमें पहचान मिलती है, लेकिन अगर हम आंख बंद करके समूह के साथ हो जाएं, तो अपनी सोचने की क्षमता खो सकते हैं और किसी विचारधारा के गुलाम बन सकते हैं।
बिल्कुल, और अध्याय चार उस पल की बात करता है जब हमारा पुराना नक्शा किसी नई चीज को समझा नहीं पाता। कोई अप्रत्याशित घटना, कोई विश्वासघात, कोई ऐसी जानकारी जो हमारे सारे विश्वास हिला दे, जिसे पीटरसन विसंगति या एनोमली कहते हैं।
हाँ, वो बहुत डलावना और बेचैन करने वाला अनुभव होता होगा जब अपनी जानी पहचानी दुनिया बिखर जाती है।
हाँ, होता है, लेकिन पीटरसन कहते हैं कि यही वो क्षण है जहाँ सीखने और आगे बढ़ने का सबसे बड़ा मौका होता है। नायक की यात्रा अक्सर यहीं से शुरू होती है, उस विसंगति से।
इसके बाद अध्याय पांच में विरोधी भाइयों की कहानी आती है, हॉस्टाइल ब्रदर्स, केन और हाबिल की बाइबल कथा। ये बुराई को समझने के लिए अहम लगती है।
बहुत अहम। पीटरसन इस कहानी का इस्तेमाल करके दिखाते हैं कि जीवन की मुश्किलों और तकलीफों के प्रति दो तरह की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। हाबिल, एबल, उस इंसान का प्रतीक है जो जीवन की दुखद सच्चाई को स्वीकार करता है, जो जरूरी त्याग या बलिदान करने को तैयार है अपने लक्ष्य के लिए और मुश्किलों के बावजूद सही काम करने की कोशिश करता है। ये उसका रोल है।
और केन?
केन उस इंसान का प्रतीक है जो जीवन के अन्याय और अपनी तकलीफों को देखकर कड़वाहट, जलन और गुस्से, रिजेंटमेंट जिसे कहते हैं, उससे भर जाता है। वो दुनिया को, भगवान को और सफल लोगों को दोष देता है। वो त्याग करने से इनकार करता है, झूठ का सहारा लेता है और आखिर में जानबूझकर बुराई का रास्ता चुनता है, यानी जो अच्छा है उसे ही नष्ट कर देना चाहता है।
ओहो।
पीटरसन के लिए यही कड़वाहट और नाराजगी व्यक्तिगत और सामाजिक बुराई की जड़ है। ये जीवन के प्रति एक बहुत ही नकारात्मक रवैया है।
ये तो काफी गंभीर बात है। आगे के अध्याय शायद इन्हीं मूल रूपों को और खोलते हैं, जैसे वो परोपकारी पिता और महान माँ वाले।
हाँ बिल्कुल, जैसे परोपकारी पिता जो व्यवस्था और अव्यवस्था में सही संतुलन बनाता है, जिम्मेदारी और समझदारी का प्रतीक है, और महान माँ के दोनों पहलू, जीवन देने वाली और घुटन पैदा करने वाली। अंत में, निष्कर्ष में, पीटरसन फिर से व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर देते हैं। नायक की तरह जीना, यानी स्वेच्छा से अव्यवस्था और दुख का सामना करना, सच बोलना, जिम्मेदारी उठाना और अनजाने से लगातार कुछ बेहतर बनाना। ये कोई मंजिल नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया।
तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? पहला तो शायद यही है कि अर्थ की एक संरचना होती है, आर्किटेक्चर ऑफ मीनिंग। ये कोई हवा हवाई चीज नहीं, बल्कि मिथकों, मनोविज्ञान और शायद हमारे दिमाग की बनावट में खोजी जा सकती है।
बिल्कुल। दूसरा, व्यवस्था और अव्यवस्था का खेल, ऑर्डर केओस डाइकोटमी। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं, हमारी जिंदगी की हकीकत है। हम सब सुरक्षा भी चाहते हैं और चुनौती भी। असली मतलब इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की कला में है, न कि किसी एक को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश में। जैसे घर व्यवस्था और बाहर की दुनिया अव्यवस्था, दोनों जरूरी हैं।
तीसरा, मिथक का सच और विज्ञान का सच, मिथोलॉजिकल ट्रूथ वर्सेस साइंटिफिक ट्रूथ। पीटरसन का कहना है कि मिथक हमें ये नहीं बताते कि दुनिया क्या है, ये तो विज्ञान बताता है, बल्कि ये बताते हैं कि उस दुनिया में सार्थक रूप से कैसे जिया जाए। ये जीने के दिशा निर्देश हैं जो हजारों सालों के इंसानी अनुभव से निकले हैं।
हाँ, और चौथा, दुख और त्याग की जरूरत, नेसेसिटी ऑफ सफरिंग एंड सैक्रिफाइस। ये सुनने में शायद अच्छा ना लगे, लेकिन पीटरसन कहते हैं कि सार्थक जीवन दुख से भागने में नहीं है, बल्कि जरूरी दुख को स्वेच्छा से अपनाने और किसी बड़े लक्ष्य के लिए त्याग करने में है। जब हम किसी मुश्किल काम के लिए मेहनत करते हैं या किसी प्रियजन के लिए कष्ट उठाते हैं, तो उसी से जीवन को गहराई और मतलब मिलता है।
और पांचवा, व्यक्तिगत जिम्मेदारी और नायक की भूमिका, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हीरोइक एक्शन। अर्थ हमें थाली में परोसकर नहीं मिलता, उसे बनाना पड़ता है, और ये बनाने का तरीका है अपनी जिंदगी की मुश्किलों का सामना करना, सच बोलना और दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने की जिम्मेदारी लेना। हर व्यक्ति अपनी कहानी का नायक बन सकता है, यही उसका सही रोल है, यही उसका असल लक्ष्य होना चाहिए।
इसमें दो और अहम चेतावनियां भी हैं जो मुझे लगता है बहुत जरूरी हैं। एक, विचारधारा के कब्जे का खतरा, डेंजर ऑफ आइडियोलॉजिकल पोजिशन, यानी किसी एक विचार या समूह से इतने ज्यादा जुड़ जाना कि आप सच देखना ही बंद कर दें, आंखें बंद कर लें।
हाँ।
और दूसरा, कड़वाहट का जहर, रिजेंटमेंट एज द रूट ऑफ मैलवोलेंस। जीवन की नाइंसाफियों पर कड़वाहट पाल लेना हमें केन की तरह विनाशकारी बना सकता है।
किताब में सीधे सीधे उदाहरण कम हैं, पर कई विचार ऐसे हैं जो दिमाग में बैठ जाते हैं। जैसे पहला, हम तथ्यों के नहीं अर्थ के प्राणी हैं। मतलब हमारी भावनाएं, हमारे काम सिर्फ जानकारी से नहीं चलते, बल्कि इस बात से चलते हैं कि उस जानकारी का हमारे लिए मतलब क्या है।
सही कहा।
दूसरा, सिर्फ व्यवस्था काफी नहीं है, सीखने के लिए हमेशा कुछ नया और जरूरी होता है। ये याद दिलाता है कि सिर्फ सुरक्षित दायरे में रहना ही काफी नहीं, कंफर्ट जोन में, विकास के लिए अज्ञात में कदम रखना ही पड़ता है, भले ही वो थोड़ा डरावना लगे। तीसरा, कंधे सीधे रखकर खड़े होने का मतलब है जीवन की भयानक जिम्मेदारी को खुली आंखों से स्वीकार करना। ये सिर्फ शारीरिक पोस्चर की बात नहीं है ना, ये एक मानसिक और नैतिक रवैया है। साहस के साथ, सच्चाई के साथ जीवन की मुश्किलों का सामना करने की तैयारी, अपना रोल स्वीकारना।
बिल्कुल। चौथा, आप जिस चीज पर निशाना साधते हैं वही आपको दिखाई देता है। ये बताता है कि हमारे लक्ष्य, हमारे गोल्स तय करते हैं कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं। अगर हमारा लक्ष्य ऊंचा और सार्थक है तो हमें अवसर दिखेंगे, अगर लक्ष्य छोटा या नकारात्मक है तो हमें हर तरफ बाधाएं ही नजर आएंगी। हमारा नजरिया बदल जाता है।
और पांचवा, अर्थ ही जीवन के अनिवार्य दुख का असली तोड़ है। खुशी शायद आए और जाए, लेकिन अगर जीवन में गहरा अर्थ है जो जिम्मेदारी उठाने और सार्थक लक्ष्य का पीछा करने से मिलता है, तो बड़े से बड़ा दुख भी सहा जा सकता है। ये विचार वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं।
हाँ, ये सब सुनने में बहुत गहरा और शायद थोड़ा मुश्किल भी लगता है। अब सवाल ये उठता है कि इन विचारों को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं, कैसे लागू करें?
कई तरीकों से। सबसे पहले तो व्यक्तिगत स्तर पर अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को दोष देने के बजाय खुद जिम्मेदारी लेना। जिन चीजों से डर लगता है उनसे भागने के बजाय उनका सामना करने की हिम्मत जुटाना। छोटे छोटे ही सही पर सार्थक लक्ष्य तय करना और उनके लिए काम करना, अपना रोल निभाना।
माता पिता के रूप में भी ये बहुत काम का हो सकता है। बच्चों को जरूरत से ज्यादा सुरक्षित रखना, ओवर प्रोटेक्ट करना, उन्हें अव्यवस्था या चुनौतियों से पूरी तरह बचाना, असल में उनके विकास को रोक सकता है।
हाँ, ये बात सही है।
उन्हें प्यार और सुरक्षा व्यवस्था देने के साथ साथ उम्र के हिसाब से जिम्मेदारियां देना और उन्हें गलतियों से सीखने देना, अव्यवस्था का सामना करना भी जरूरी है ताकि वो मजबूत और काबिल बने, उन्हें अपना नायक बनने देना।
कामकाज की जगह या नेतृत्व में भी ये लागू होता है। एक अच्छा लीडर वही है जो मुश्किल समय में उम्मीद बनाए रखता है, जो संगठन में स्थिरता, व्यवस्था और नए विचारों या बदलावों, अव्यवस्था के बीच संतुलन साधता है।
हाँ, और वो सच बोलता है और जिम्मेदारी लेता है।
बिल्कुल।
और मानसिक स्वास्थ्य के लिहाज से भी देखें, कई बार हमारी चिंताएं या उदासी इसलिए होती हैं क्योंकि हमारे पुराने अर्थ के नक्शे अब काम नहीं कर रहे होते, वो टूट चुके होते हैं। थेरेपी इसमें मदद कर सकती है कि हम अपने अनुभवों को नए सिरे से समझें और ज्यादा मजबूत और सार्थक नक्शे बनाएं, जिसमें पीड़ित महसूस करने के बजाय जिम्मेदारी और साहस का भाव हो।
यहाँ तक कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी ये सोच काम आ सकती है। किसी एक विचारधारा के प्रति कट्टर होने से बचना, ये समझना कि हर नजरिए की अपनी सीमाएं होती हैं, दूसरों के विचारों को सुनने और समझने की कोशिश करना, भले ही हम उनसे सहमत ना हो, थोड़ी बौद्धिक विनम्रता बनाए रखना,
अपने ना देना बहुत जरूरी है।
हाँ,
कुल मिलाकर ये विचार हमें जीवन की मुश्किलों को सिर्फ समस्याओं की तरह देखने के बजाय उन्हें सीखने, मजबूत बनने और गहरा अर्थ खोजने के मौकों की तरह देखने में मदद कर सकते हैं।
तो इस पूरी बातचीत से सबसे बड़ी सीख क्या रही? मेरे लिए तो शायद ये एहसास कि अर्थ कोई खोई हुई चीज नहीं जिसे ढूंढना है, बल्कि ये वो चीज है जिसे हमें हर रोज अपने कामों से, साहस और सच्चाई से बनाना पड़ता है। ये एक लगातार चलने वाली रचना है।
और मेरे लिए ये समझ कि जिंदगी में व्यवस्था और अव्यवस्था दोनों का अपना महत्व है। हम न तो पूरी तरह सुरक्षित और स्थिर रह सकते हैं, न ही पूरी तरह अनिश्चितता में जी सकते हैं। स्वास्थ्य और विकास इन दोनों के बीच नाचने में है, एक गतिशील संतुलन साधने में। और ये कि हमारी पुरानी कहानियों और मिथकों में वाकई बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक ज्ञान छिपा है, अगर हम उन्हें समझने की कोशिश करें।
ये हमें याद दिलाता है कि हम सबके अंदर क्षमता है अपनी कहानी के नायक बनने की, जो चुनौतियों का सामना करता है, जिम्मेदारी लेता है, अपने रोल को समझता है और कुछ अच्छा रचता है। और साथ ही हम सबके अंदर कड़वाहट और विनाश की राह चुनने की भी क्षमता है। केन की तरह चुनाव हमेशा हमारा होता है।
ये सब सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है, अगर हम सब अपनी कहानी के नायक हैं और हमारा रोल और लक्ष्य अव्यवस्था का सामना करना है, तो हमारी कहानी का वो ड्रैगन या वो अव्यवस्था क्या है जिसका सामना हमें आज करने की जरूरत है, व्यक्तिगत तौर पर भी और सामूहिक तौर पर भी, ताकि हम और हमारा समाज बेहतर बन सके।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।